नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री ने वैश्विक चुनौतियों के बीच सामूहिक प्रयास और राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया, दोहराया कि सरकार की नीति और रणनीति जनहित पर केंद्रित है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने 3500 मरीन और नौसैनिकों के पश्चिम एशिया पहुंचने की घोषणा की। नेपाल में पिछले 35 वर्षों में नेता और उच्च अधिकारियों की संपत्तियों की जांच की घोषणा। और अराइना सबलिंका ने मायामी ओपन टेनिस का महिला सिंगल्स खिताब जीता। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों के बीच सामूहिक प्रयास और राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया है। कल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि संसद में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न संकट से निपटने के बारे में उन्होंने विस्तार से बात की और मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की है। श्री मोदी ने देशवासियों से धैर्य से मौजूदा संकट का सामना करने की अपील की।
मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक महीने से पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण कई देशों में भोजन, पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हर देश इस संकट से निपटने के लिए प्रयासरत है। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने बताया है कि 3500 मरीन और नौसैनिकों की एक टास्क फोर्स यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत के साथ मध्यपुर पहुंच गई है। ये तैनाती ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की व्यापक सैन्य तैयारियों का हिस्सा मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पेंटागन मध्यपुर में अतिरिक्त 10,000 जमीनी सैनिकों की तैनाती पर भी विचार कर रहा है, जिससे कूटनीति के साथ साथ अन्य सैन्य विकल्प भी उपलब्ध हो सके। हालांकि सैनिकों की तैनाती के निश्चित स्थान स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें ईरान के करीब महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप के आसपास रणनीतिक दूरी पर तैनात किया जा सकता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने दुबई में अमेरिकी सेना के दो ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के अनुसार इन ठिकानों पर 500 से अधिक अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। एक रिपोर्ट।
दुबई में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमले को लेकर ईरानी प्रवक्ता ने दावा किया कि हमले के बाद दुबई में एम्बुलेंस कई घंटों तक मृत और घायल अमेरिकी सैनिकों को ले जाने में व्यस्त रही। लंबे समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि अमेरिकी केंद्रीय कमान ने दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि दुबई में किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर कोई हमला नहीं हुआ है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेशकियान ने खाड़ी देशों को अमेरिका इसराइल गठबंधन का समर्थन न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन देशों को चेतावनी दी है कि यदि वो अपने देश में विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो वो अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल ना करने दें। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
यमन के हौसियों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच इसराइल को निशाना बनाते हुए दूसरे सैन्य अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के अंतर्गत दक्षिणी कब्जे वाले फलस्तीन में स्थित महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया गया है। हौसियों के सैन्य प्रवक्ता याहिया सरी ने कहा कि यह अभियान पवित्र जिहाद युद्ध के अंतर्गत शुरू किया गया था और यह ईरान तथा लेबनान के हिजबुल्ला जैसे सहयोगी समूहों की सैन्य कार्रवाईयों के साथ समन्वय में किया गया है। ये घटना यमन में ईरान समर्थित समूह द्वारा आधिकारिक तौर पर इस क्षेत्र में संघर्ष में शामिल होने के कुछ ही समय बाद हुई है। हौसियों ने कहा है कि उनके अभियान तब तक जारी रहेंगे जब तक घोषित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाते और प्रतिरोध के सभी मोर्चों पर हो रहे आक्रमण समाप्त नहीं हो जाते। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध नो किंग अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनों में विभिन्न शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मिनेसोटा के सेंट पॉल स्थित स्टेट कैपिटल में आयोजित मुख्य रैली में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है।
नो किंग्स प्रदर्शन अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए थे, जिनमें प्रमुख शहरों में बड़े बड़े जुलूस, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जमावड़े शामिल थे। ये प्रदर्शन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राज्यों में हुए। न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शनकारियों ने मिडटाउन मैनहट्टन से मार्च किया, जिसमें आवर्जन परिवर्तन, ट्रंप प्रशासन और ईरान के साथ संघर्ष का विरोध करने वाले बैनर थे। वहीं सैन फ्रांसिस्को में बड़ी संख्या में लोग एम्बार्केड्रो प्लाजा में इकट्ठा हुए। ये नवीनतम प्रदर्शन आर्थिक चुनौतियों जैसे ईंधन की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में युद्ध से जुड़ी धीमी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताओं के बीच हुए हैं। प्रदर्शन बहुत हद तक शांतिपूर्ण रहे और व्यापक भागीदारी सरकारी नीतियों और आर्थिक मुद्दों पर जनता के निरंतर असंतोष को दर्शाते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIINewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को 1 अप्रैल से पेट्रोल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस दौरान कच्चे तेल का निर्यात अप्रभावित रहेगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने बताया कि यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। श्री नोवाक ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक तेल और परिष्कृत उत्पाद बाजारों में अस्थिरता को इस निर्णय का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि इससे रूसी ऊर्जा की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की दोहा यात्रा के दौरान यूक्रेन और कतर ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने क्षेत्रीय तनाव और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। एक रिपोर्ट।
वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कल लुसेल पैलेस में कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की समीक्षा की, जिसमें क्षेत्र में बढ़ते तनाव और यूक्रेन में जारी संघर्ष शामिल है। कतर के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस समझौते में मिसाइल खतरों और मानव रहित हवाई प्रणालियों से निपटने में सहयोग के साथ साथ दोनों देशों के बीच विशेषज्ञता के आदान प्रदान को भी शामिल किया गया है। बैठक के दौरान जेलेंस्की ने कतर के साथ यूक्रेन की एकजुटता व्यक्त की और क्षेत्रीय देशों को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
नेपाल की नई सरकार ने घोषणा की है कि वो 1990 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और उच्च अधिकारियों की संपत्तियों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने कल जारी किए गए 100 सूत्रीय शासन सुधार एजेंडे में कहा कि 15 दिन के भीतर एक सशक्त जांच समिति का गठन किया जाएगा। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब पिछले 3 दशकों में सरकार का नेतृत्व करने वाले कई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में कई यूरोपीय राजनेताओं, अभियानकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने यूरोपीय संघ द्वारा पाकिस्तान को दिए गए विशेष व्यापारिक दर्जे, सामान्यीकृत वरीयता योजना की गहन समीक्षा की मांग की है। ईयू टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक में पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न, राजनीतिक दमन, जबरन गुमशुदगी और बुनियादी अधिकारों की रक्षा में विफलता जैसे आरोप लगाए गए हैं। टेनिस में बेलारूस की अराइना सेबालेंका ने फ्लोरिडा में अमेरिका के कोकोगाफ को हराकर मायामी ओपन खिताब जीत लिया है। वो 2022 में ईगा स्वेटेक के बाद सनशाइन डबल पूरा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सेबालेंका ये उपलब्धि हासिल करने वाली 5वीं महिला हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य के जीरी लेहका का मुकाबला इटली के विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी यानिक सिनर से होगा। तीरंदाजी में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज तेजल राजेंद्र सालवे ने बैंकॉक में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप के पहले चरण में रजत और कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए 2 पदक हासिल किए। 18 वर्षीय तेजल ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जबकि भारतीय महिला कंपाउंड टीम के हिस्से के रूप में उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वैश्विक चुनौतियों के बीच सामूहिक प्रयास और राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया, दोहराया कि सरकार की नीति और रणनीति जनहित पर केंद्रित है। अमेरिका के केंद्रीय कमान ने 3500 मरीन और नौसैनिकों के पश्चिम एशिया पहुंचने की घोषणा की। नेपाल में पिछले 35 वर्षों में नेता और उच्च अधिकारियों की संपत्तियों की जांच की घोषणा। और अराइना सेबालेंका ने मायामी ओपन टेनिस का महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।